और आपसे क्लास चल रहा था 13/1/1967 तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी त्रिमूर्ति का चित्र स्क्रीन में बनाने के लिए अभी टाइम तो पड़ा है। कब की बात है? है? कब की बात बताइए। वो होती है जड़ स्क्रीन और बेहद का बाबा तो बेहद की बात बोलते हैं। कौन सी स्क्रीन में छपाने के लिए अभी टाइम पड़ा हुआ है? है? हद की स्क्रीन या बेहद की स्क्रीन? एक होती है हद के चित्रों की प्रदर्शनी, जड़ चित्रों की, और दूसरी होती है बेहद के चित्रों की चैतन्य प्रदर्शनी। जो 73 की 73 की अभ्यक्तवाणी में भी बोला था, कि 73 में जो मेला हुआ उस मेले में जड़ चित्रों की प्रदर्शनी का इनाम ये दीदी दादियां देंगी और बाप दादा चैतन्य प्रदर्शनी का इनाम देंगे। तो बोला अभी इससे चैतन्य प्रदर्शनी चैतन्य स्क्रीन पर बनाई गई प्रदर्शनी के चित्रों का हाल ये अभी टाइम तो पड़ा हुआ है। स्क्रीन में बनने वाली होगी तो मैं समझता हूँ अभी बहुत जल्दी बन सकती होगी। अगर बॉम्बे वाले समझेंगे तो बनाई देंगे। बॉम्बे वाले क्यों? नाम ही है बॉम्बे, ये नाम क्यों पड़ा? है हर हर बम बम की नगरी है। हर हर बम बम का काम क्या है? है विनाशकारी। जो बात बेसिक नॉलेज में भी बताई गई थी, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। तो ऐसी विनाश की वाणी गुंजाने वाला त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सा चित्र है? त्रिमूर्ति में चित्र तो कई हैं, परंतु विनाश का कार्य कराने वाला कौन गाया हुआ है? जो गाया हुआ है उसका काम, इस दुनिया में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक कोई नहीं कर सके। क्या काम? पुरानी परंपराओं का विनाश, पुराने राज्यों का विनाश, पुरानी भाषा का विनाश, पुराने धर्मों का विनाश। वो कार्य जो मूर्ति कर सकती है, उसका चित्र पहले पहले स्क्रीन में छपाना है, जड़ स्क्रीन में नहीं। कौन सी स्क्रीन? स्क्रीन जड़ भी होती है लेकिन ट्रांसपेरेंट होती है, तो चैतन्य स्क्रीन भी कैसी होगी? है ट्रांसपेरेंट होगी। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनके चेहरे देखने से पता चलता है कि इन चेहरों में ट्रांसपेरेंट आत्मा दिखाई देती है या देवान दिखाई देता है। आत्मा दिखाई देती है। तो बाबा ने कहा, मैं तो समझता हूं बिल्कुल जल्दी बन सकती होगी। कुछ समय की वाणी है, 67 की वाणी है। अगर बॉम्बे वाले समझेंगे तो बनाएंगे। बॉम्बे में बाबा की नजर में प्रदर्शनी के चित्रों को बनाने वाला बच्चा कौन दिखाई देता था? है बॉम्बे का रमेश भाई। बाबा हद में बोलते हैं या बेहद में? रमेश का अर्थ क्या है? रमा ईश, रमा पार्वती को कहा जाता है, जो शंकर की याद में रमी रहती है, और ईश माने उसका स्वामी। तो पार्वती का स्वामी जो विनाशकारी गाया हुआ है, उसका चित्र बॉम्बे वाले बनाए देंगे। और बॉम्बे में बाबा जब ये बात बोल रहे हैं तो बाबा की नजर में कौन बच्चा आया? रमेश। जिनकी हद की नजर है उनकी नजर में हद का बच्चा आया, और जिनकी बेहद की नजर है उनकी नजर में बेहद का बच्चा आया, रमेश अर्थात शंकर, जिसके नाम के साथ साथ बंबई की नगरी का नाम जोड़ा हुआ है। वो बच्चा ट्रांसपेरेंट स्क्रीन में उस चैतन्य चित्र को बनाई देगा। किस आधार पर? स्थूल रंगों और तूलिका के आधार पर या योग बल के आधार पर? अव्यक्त वाणी में तो बोला है। तुम बच्चों की प्रत्यक्षता अव्यक्त स्टेज के आधार पर होगी। अव्यक्त स्टेज तुम बच्चों के द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करेगी। तो जिस बम्बई का नाम हर हर बम्बे, शंकर के नाम पर पड़ा हुआ है, जरूर बेहद में काम किया होगा माया की नगरी को क्या करने का है, विनाश करने का। बोला बनाने में 2-3 हजार खर्चा हुआ, 5 हजार हुआ हर जाने में। और फिर अखबार में भी ऐसे ही छपाई देवे, ये थोड़ा ही है जिसमें इसमें तो थोड़ा ही जाएगा। उस अखबार में एक एक पेज का चौथा हिस्सा ही जाएगा। ये पेज पेज कर रहे हैं ना। अच्छा, अखबार में चौथा हिस्सा ही ले लेवे, जिनमें भी ये पूरा हो सकता है या रंगीन जो है ये अखबार बिक ली, उनमें भी अगर एक पेज ले लेवे तो कोई हर्जा नहीं है। बाबा ये लिखते रहते हैं, छोटों के लिए भी लिखते रहते हैं, बड़ों के लिए भी लिखते रहते हैं। स्क्रीन में ट्रांसपेरेंट ऐसे चित्र बनाओ। अभी छोटे के लिए, बड़े के लिए, वो छोटे तो छोटा कर देंगे और क्या करेंगे। जो बड़े हैं वो बड़ा कर देंगे। बाबा के हिसाब से छोटे और बड़े किस हिसाब से होते हैं, हैं? ज्ञान में जो बड़ा, और ज्ञान के आधार पर ही योग लगता है, तो ज्ञान योग में जो बड़ा वो बड़ा ठहरा क्या। तो ज्ञान योग में बड़ा शिव बाबा की नजर में कौन होगा। अच्छा, शिव बाप की नजर में कौन होगा जो ब्रह्मा के द्वारा बोलता है? अरे शिव बाप जो त्रिकालदर्शी है, जनमन के चक्र से न्यारा है, उसके बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र की नजर में बड़ा कौन होगा? अरे हैं? शिव बाप आत्माओं का बाप, सुप्रीम गॉड फादर, उसके कितने बच्चे हैं मनुष्य सृष्टि में? 500-700 करोड़। उन बच्चों में तो सुप्रीम गॉड फादर की नजर में कोई बड़े से बड़ा बच्चा है? है? कोई नहीं। कौन है जो ज्ञान में भी तीखा और योग में भी तीखा और भक्ति मार्ग में भी तीखा माना गया? भक्ति मार्ग में भी भक्त बेचारे कहते तो हैं कि ब्रह्मा ने जो पहले पहले सृष्टि रची, मानसी सृष्टि, जो मन इंद्रियों में सबसे बड़ा होता है, उस मानसी सृष्टि में जो चार पुत्र तैयार किए, चार पुत्रों की रचना हुई, उनमें भक्ति मार्ग में या बाबा की नजर में कौन सा बच्चा बड़ा माना गया? ज्ञान योग के आधार पर बड़ा बच्चा माना गया तो ज्ञानेश्वर टाइटल मिला, और योग के आधार पर बड़ा बच्चा माना गया तो योगीश्वर का टाइटल मिला। और सभी धर्मों की स्थापना जिन धर्म पिताओं के आधार पर हुई, उन धर्म पिताओं के नाम के आधार पर धर्म का नाम पड़ा। बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद के द्वारा मुस्लिम धर्म, माने धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। धर्म की स्थापना में ये बात प्रसिद्ध है कि धर्म पिताओं को धर्म के धक्के सबसे जास्ती खाने पड़ते हैं। इससे साबित होता है जो भारत का प्राचीन से प्राचीन धर्म है, उसकी स्थापना में स्थापना करने वाले धर्म पिता को धर्म के धक्के सबसे जास्ती खाने पड़े होंगे। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक से भी जास्ती। क्यों? क्योंकि वो धर्म पिताएं तो ग्रेट फादर से ही माने गए हैं। महान आत्माएं माने गए, महान धर्म पिताएं। कोई कई तो ऐसे महान हुए जो दुनिया की जनरेशन मनुष्यों की जो थी, लगभग उसकी आधी जनरेशन क्राइस्ट को अपना बाप मान के बैठ गई। लेकिन वो साहब भाद्र के पिता थे। वेद 500-700 करोड़ को किसी ने नहीं माना, अपना फॉलोअर न फॉलोअर्स ने कोई धर्म पिता को अपना बाप माना, 500-700 करोड़ ने कोई नहीं माना, नहीं माना। लेकिन एक ऐसी शख्सियत भी है ऐसा आदमी भी है मनुष्य सृष्टि में जिसको हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो कोई भी धर्म वाले हो उसका नाम लेते हैं मान्यता मानते हैं मानते हैं कि सृष्टि का आदि पुरुष आदम था। क्या नाम दिया? आदम, पहला आदमी। और मुसलमानों ने तो ये भी मान लिया और उन्होंने गायन भी है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। साबित हो जाता है कि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि तो सिर्फ धर्म पिताएं थे, अपने अपने धर्मों के बाप थे लेकिन परिवार में बाप से भी बड़ा कौन होता है? कोई होता है या नहीं है? कौन? ग्रैंडफादर। परिवार में बाप से भी बड़ा ग्रैंडफादर जिसे बाबा कहा जाता है। जो ब्रह्मा मुख से ऊंचे से ऊंचे बाप भी बोलते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। क्या इब्राहिम बुद्ध साहिब तो ग्रेट फादर्स हुए लेकिन उनका भी कोई बाप है सात धर्म पिताओं का, वो डबल ग्रेट लगा दिया। तो जिसके लिए डबल ग्रेट लगाया उसी को भारत में आदिदेव कहा जाता है। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमच्छ विश्वस्य परम निधानम। तो मनुष्य शक्ति की दुनिया में बड़े से बड़ा कौन हुआ है? अरे कोई हुआ कि नहीं हुआ है? कोई नहीं हुआ? हुआ। जिसको हिंदू मुसलमान सिख है ईसाई सब धर्म के लोग मानते हैं, जानते नहीं हैं लेकिन मानते तो हैं। तो उसके लिए बताया कि बड़ा बड़ा कर देंगे। बड़ा होगा तो काम के आधार पर बड़ा होगा या आयु के आधार पर बड़ा होगा? उम्र के आधार पर। तो ऐसे ऐसे आइडिया जैसे बाबा उसका भी ये क्या पेपर बेच की भी आइडिया निकाली, मेडल्स भी बन रहे हैं जिन मेडल्स में त्रिमूर्ति का चित्र दिया हुआ है, परंतु वो मेडल्स भी जास्ती चाहिए। और कोई ये त्रिमूर्ति के कार्ड्स भी निकाले और बाकी जो निमंत्रण करेंगे ही जो जो भी जहां करेंगे भाषण या वो फलाना फलाना प्रोग्राम करेंगे तो यहां तो कुछ नहीं होता है। कहां यहां तो कुछ नहीं होता है, कहां है माउंट आबू में तो कुछ नहीं होता है। न यहां राजधानी स्थापन होनी है और न यहां कोई सेवा होती है। दीपक तले अंधेरा, क्या कहा है? ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे माउंट आबू की पब्लिक ने कोई ने ज्ञान को माना जाना तो बोला यहां तो कुछ नहीं होता है, माने कोई सेवा एवा यहां होती नहीं है, समझा ना? क्यों नहीं सेवा होती है? कुछ कारण होगा या नहीं होगा है? क्या कारण? यहां तो हम हैं ही जैसे किनारे में, बंदर तो समझते हैं ना बच्चे, क्योंकि हम बंदर समझते हैं मनुष्यों को, फिर भी कोई का अच्छा दुकान वाला वाकिफ हो तो बाजार में भी रख सकते हैं क्या? क्या रख सकते हैं? अरे सेवा के लिए किस चित्र की बात हो रही है, हैं? त्रिमूर्ति चित्र की बात हो रही थी ना, और त्रिमूर्ति में भी कोई अव्वल नंबर एक मूर्ति है जिसके लिए गायन भी है, देवदेव महादेव ब्रह्मा देव विष्णु देव और उनसे भी ऊपर महादेव। बाबा ने तीन पुरियों का चित्र भी बनवाया, उसमें भी तीन सूक्ष्म पुरियों में नीचे कौन? ब्रह्मा देव, बीच में कौन? विष्णु देव और सबसे ऊपर महादेव। तो बाजार में भी वो ट्रांसपेरेंट चित्र रख सकते हैं, बत्तियां बत्तियां भी उनके ऊपर जलाई सकते हैं क्या? तो चित्र को सजाते हैं तो क्या करते हैं है? बत्तियां बत्तियां जलाई देते हैं, जड़ बत्तियों की बात है या चैतन्य बत्तियों की बात है? हैं? चैतन्य बत्तियों की बात है। अगर कोई ऐसा प्रबंध हो सके तो उस चित्र की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर बत्तियां भी जलाई सकते हैं, इसके लिए कोई भी बातचीत अच्छे आदमी से की जाए, क्योंकि मैं तो इस भीलों की नगरी में कोई को जानता नहीं हूं। कौन सी नगरी है? माउंट आबू में ज्यादा कौन रहते हैं? भील रहते हैं। वहां के भीलों की नगरी क्यों प्रसिद्ध है? है अरे शास्त्र में कोई भील का नाम है? हैं? एकलव्य है तो ब्रह्मा का बाबा कहते हैं उस एकलव्य की जनरेशन का कोई भील यहाँ नहीं है जिसको मैं जानता हूं। क्यों नहीं जानते है? क्यों नहीं जानते? अरे दुनियावी रीति से कोई बड़ा आदमी होगा, धनाढ्य होगा, तो उसकी नजर छोटे छोटे आदमियों पर जाएगी है? नहीं जाएगी। तो बोला मैं तो जानता नहीं। तो अगर वो ट्रांसपेरेंट का चित्र शिव जयंती पर रख देवे तो भी कोई हर्जा नहीं। क्या कब रख देवे? शिव जयंती पर रख देवे। शिव जयंती, शिव किसका नाम है? बिंदी का नाम है। मेरी बिंदी का नाम शिव है, मेरा शरीर तो है ही नहीं। तो जिसका शरीर ही नहीं है उसकी जयंती होगी है? जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार आत्मा की मनाई जाती है? इस दुनिया में भी माता के गर्भ में निराकार आत्मा प्रवेश करती है 4-5 महीने के बाद। तो जय जयकार रूपी जयंती मनाते हैं है? नहीं मनाते। और बताई भी दिया वो निराकार आत्मा जिस जड़ शरीर में प्रवेश करती है वो शरीर जड़ शरीरधारी आत्मा जो मनुष्यों का पिता कही जाती है, प्रजा का पिता कही जाती है, वो आत्मा साकार है या निराकार? साकार। तो उसमें प्रवेशता की तो जयंती नहीं मनाई जाएगी। मनाई जाएगी? नहीं मनाई जाएगी। हाँ बाद में जब गुप्त रहने वाली आत्मा गर्भ में जो कोई को पक्का पक्का दिखाई ही नहीं देती, वो जब बाहर आए शरीर के साथ तब जयंती मनाई जाएगी या पहले ही मनाई जाएगी? बाहर आए तो जयंती मनाई जाए। तो बताओ वो गर्भ में जिस पिंड में निराकार आत्मा ने प्रवेश किया, किया कि नहीं है? प्रवेश किया तो हलचल हुई या नहीं हुई? माताएं ज्यादा जानती होंगी, बच्चे वाली माताएं, कि 4-5 महीने के बाद जब आत्मा प्रवेश करती है तो हलचल होती है, अनुभव होती है या नहीं होती है? कहती हाँ होती है। उससे पहले हलचल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो पिंड था वो निर्जीव था। कैसा था? निर्जीव था, उसमें आत्मा नहीं थी। तो सवाल पैदा होता है, वो निर्जीव पांच तत्वों का बना हुआ, जड़ तत्वों का बना हुआ जो पिंड है, वो कब आया? आत्मा तो बाद में प्रवेश करती है, निर्जीव पिंड पहले होता है, होता है ना? तो जो निर्जीव पिंड आया वो कहां से आया? है? बाप से आया। कब आया? है? चार पांच महीने की, वो तो दुनिया भी बात हो गई। यहां तो बाप बताते हैं, हम नहीं जानते थे कि मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। कब आता हूं? सात साल जब हो जाते हैं तब आता हूं, और उसमें 40 साल जोड़े तो ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो पहली बार कब आया? जड़ शरीर में आया, रथ में आया। रथ में आया या आत्मा में आया? है? रथ में आया। जो गीता में भी कहा है अर्जुन से, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तुम्हारा जो शरीर है ना, शरीर रूपी रथ है ना, ये धर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। क्या क्षेत्र माने? युद्ध भूमि। महाभारी महाभारत लड़ाई जो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई है, उसकी युद्ध भूमि का सेंट्रल स्थान कौन सा है? है ये शरीर रथ जिसमें मैं आता हूं। तो रथ निर्जीव होता है या जीवंत तो होता है? है रथ जीवित कहा जाता है या रथ निर्जीव कहा जाता है? है? जीव माने चलता फिरता, बोलता चालता। निर्जीव माने मुर्दा। कैसा? मुर्दा, जो बात भी बताते हैं। जब तुम शिव बाबा कहते हो तो शिव बाबा में से शिव हटा दो तो क्या रह जाएगा? है? शव रह जाएगा, मुर्दा रह जाएगा। तो साबित हुआ कि जिस मनुष्य शक्ति के बाप वाली आत्मा में, शरीर में कहो, शरीर में शिव पहले पहले प्रवेश करते हैं, तो वो शरीर मात्र पांच तत्वों का जड़ पुतला होता है या चैतन्य होता है? है? जड़ पांच तत्वों का पुतला होता है, पत्थर बुद्धि होता है या पारस बुद्धि होता है? पत्थर बुद्धि होता है। माना जो पांच जड़ तत्वों का संघात है, जिसे प्रकृति कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रा कृति प्रमाणे प्रकृष्ट अकृति माने रचना, क्या कहा जाता प्रकृष्ट रचना। पांच तत्वों का ऐसा संघात जो प्रकृति का सार है, क्या है बीज है। पांच जड़ तत्वों वाली जो प्रकृति है, प्रकृति माता कहो, ये दुनिया जो है ना पुरुष और प्रकृति का खेल है ना। प्रकृति माता है और पुरुष पिता है, तो वो है परम पुरुष, क्या परम पिता। आत्माओं के बीच परे से परे रहने वाला, जहां तक कोई की पहुंच नहीं है, परम पिता तक। वो परम पिता इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए जब आता है, नई सृष्टि बनाने के लिए आता है, पुरानी सृष्टि का विध्वंस, नई सृष्टि की पालना के लिए पुरानी दुनिया का विध्वंस और नई दुनिया की पालना भी कराता है। इसलिए वो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो वो त्रिमूर्ति शिव इस सृष्टि में जब आता है तो जड़ की रचना पहले करता है या चैतन्य की रचना पहले करता है, जड़ में आता है या चैतन्य आत्मा में आता है, है? जड़ में आता है। माना सृष्टि बनाने के लिए इस दुनिया का चाहे कोई सामान्य पिता हो या मध्यम पिता हो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जैसा, या ऊंचे से ऊंचा परम पिता हो, उसको भी आधार लेना पड़ता है। किसका? प्रकृति का। तो बताओ जब इस दुनिया का विनाश हो जाता है, टोटल विनाश, पांच तत्वों के बने शरीरों का भी विनाश, सिर्फ मनुष्य शरीर ही नहीं, जानवर पक्षी जल जीव जंतु वगैरह सब का विनाश हो जाता है, तो कुछ सार रूप में बीज रूप में बचता है या नहीं बचता है, है? क्या बचता है? अरे मनुष्य सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है। जगत पिता कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो भारत में तो मान्यता है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरम, जो जगत का पिता है जगन्नाथ है वो शंकर को माना गया। जिसका कभी विनाश की सृष्टि पर होता है, होता ही नहीं, उसके माँ बाप का किसी को पता ही नहीं, उसका विनाश नहीं होता, उसको काल नहीं खाता, क्योंकि वो कालों का काल है, महाकाल है जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाता है लेकिन उसको कोई खाने वाला नहीं, वो अटल है, अखंड है। माना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टधारी है या छोटा मोटा पार्टधारी है? ऑलराउंड पार्टधारी है। और जो 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्य हैं, इस सृष्टि पर ऑलराउंड पूरे पार्टधारी 100% नहीं है। उसके बाद आते हैं या उसके साथ ही आते हैं? बाद में आते हैं। चलो, मनुष्य सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता ही क्यों न हो, पहले उसका बीज रूप बाप आएगा या पत्ता आएगा? पहले बीज रूप बाप आएगा, बीज को बाप कहा जाता है। तो वो बीज जिसे इस जड़ जंगम सृष्टि का, जंगम माने चैतन्य सृष्टि का सार कहें, बीज कहें, वो अविनाशी है या विनाशी है? जो अविनाशी है उसका विनाश नहीं होता और जो विनाशी है उसका विनाश होता है। जो अविनाशी है उसको सत्य कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? सत्य। सत्य माने सार। क्या सार? जो इस सृष्टि का सार है, पांच जड़ तत्वों का भी सार है और चैतन्य आत्माओं का भी बीज रूप सार है। इसलिए गीता में कहा है, अव्यक्त मूर्तिना, ये सारा संसार अव्यक्त मूर्ति से निकलता है और अंत में अव्यक्त मूर्ति में ही समा जाता है। वो अव्यक्त मूर्ति के लिए ही मुरलियों में बोला है सुप्रीम सोल बाप ने ब्रह्मा की वेदवाणी में, मन मना भव। क्या बोला? मेरे मन में समा जा। कौन बोलने वाला है? किसने बोला? हैं? ब्रह्मा बाबा ने बोला है? शिव बाबा ने बोला, शिव बाप ने बोला। शिव बाप बिंदी का नाम है, शिव बाबा साकार निराकार के मेल का नाम है। ब्रह्मा बाबा उस तामसी दुनिया में कोई बूढ़ा भारत का बड़े से बड़ा जौहरी था, उसका नाम है। तो कौन सी आत्मा ने बोला मन मना भव, मेरे मन में समा जा? राम बढ़िया तो नहीं? अरे राम तो त्रेता युग का होता है, परम ब्रह्म। परम माने कोई बड़े से बड़ा ब्रह्मा है। पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो पंचमुखी ब्रह्मा में कोई परे से परे रहने वाला ब्रह्मा है, जिस माँ का आधार वो परे से परे रहने वाला परमात्मा परम पुरुष लेता है, परम पुरुष माने परम पिता सृष्टि रचने के लिए किसका आधार लेता है? माँ का आधार लेता है। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई कि आज दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं या जो भी प्राणी मात्र हैं, अपना परिवार रचने के लिए, अपना परिवार बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले पहले माता का आधार लेते हैं। तो माता का आधार क्यों लेते हैं? जो माता योनि रूप है उसका आधार क्यों लेते हैं? कोई पुरुष का आधार क्यों नहीं लेते? क्या इस दुनिया में पुरुष नहीं होते हैं? होते हैं या नहीं? सन 36 में कहते हैं आया गुप्त रूप में गर्भ में, तो पुरुष नहीं थे इस दुनिया में है? थे, लेकिन जो पुरुष हैं उनके अर्थ का अनर्थ न करें तो उसका मतलब होता है पुरु माने शरीर रूपी पुरी, शा माने शयन करने वाला, शरीर रूपी पुरी में आराम से रहने वाला, शयन करने वाला कौन? आत्मा। पुरुष माने क्या हुआ? आत्मा। और आत्माओं के बीच में परम पुरुष परे से पहरे रहने वाली आत्मा वो परम पुरुष है, तो वो भी सृष्टि रचने के लिए किसका आधार लेता? माता का आधार लेता। क्यों? माता का ही आधार क्यों लेता है? क्योंकि माताओं में ही परम पुरुष में जो पराशक्ति है, कौन सी शक्ति? पराशक्ति, जिसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की शक्ति। काय की शक्ति? सत्य की शक्ति। वो सत्य की शक्ति को धारण पुरुष नहीं कर सकते। क्या? क्योंकि कलयुग के अंत में सब पुरुष क्या बन जाते हैं? सात दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। वो अपनी शक्ति को है क्या करके नहीं रख सकते? कंट्रोल में नहीं रख पाते। वो दुर्योधन दुशासन दुष्ट युद्ध करके, दुष्ट शासन करके, कैसे भी करके अपनी शक्ति को छीन जरूर करते हैं। उस शक्ति को कहा जाता है सत्य। पुरुषों में कौन सा तत्व होता है? जो तत्व सबसे जास्ती पावरफुल है, हड्डी खून मांस मज्जा क्या चीज? अरे हैं वीर्य वही सत्य है जिससे जिस वीर्य को धारण करने वाली माता सती कही जाती है। सत्य को धारण करने वाली क्या कही जाती? सती। अगर सच्चाई से धारण करे तो उस सती को कोई झूठा न करे, माना एक की बनकर के रहे, अनेकों की बनकर न रहे, तो क्या कही जाती है? सती कही जाती है। वो सत्य को असली रूप में धारण करने वाली सती है। जिस सती के सामने साक्षात भगवान क्यों ना आ जाए, उसको भी झुकना पड़ता है। शास्त्रों में वृंदा का नाम सुना है? नहीं सुना? वृंदा जालंधर राक्षस की पत्नी थी और सती थी। उस सती में इतनी पावर थी कि जिस पावर का आधार लेकर, उसकी सतीत्व का आधार लेकर जालंधर राक्षस को साक्षात भगवान शंकर भी नहीं हरा सके। क्यों नहीं हरा सके? क्योंकि सत्य की शक्ति जालंधर राक्षस के पक्ष में थी और जब तक वो सत्य की शक्ति जालंधर राक्षस के पक्ष में रही तब तक भगवान तो क्या उनका सारा परिवार मुकाबला नहीं कर सका। और जब वो सती वृंदा हिल गई ये न के प्रकार तो जालंधर राक्षस मारा गया। क्योंकि सत्य की शक्ति उसके पक्ष में नहीं रही। तो जो पुरुषों में सत्य की शक्ति है वो पुरुष पिता तो बन सकते हैं। क्या? ज्ञान का बीज बोने वाले, सत्य का बीज बोने वाले बाप हो सकते हैं। बीज धरणी में ही बोया जाएगा? कहाँ बोया जाएगा? धरणी रूपी माता में ही बोया जाता है। तो जो माता है वो बलवती हो जाती है। जब प्रैक्टिकल जीवन में उसे धारण करती है सत्य को, तो परम पुरुष परम पिता है, उसके पास कौन सा सत्य की शक्ति है? परम पिता है तो पिता के पास कोई वर्षा होगा रचना को देने के लिए, वो तो निराकार है। निराकार के पास कौन सा वर्षा होगा? निराकारी ज्ञान का वर्षा होता है। हम सब हैं साकार। क्या है? साकार। हमारे पास क्या वर्षा है? क्या साकार वर्षा है? बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा क्या वर्षा है? जो हर पुरुष पिता बनकर पहले अपनी जो रचना है पहली पहली उसको सौंपता है, है? अरे क्या है, बोल गए? शरीर का वर्षा, कौन सी शक्ति का वर्षा है? कोई के पास धनबल की शक्ति, कोई के पास जनबल की शक्ति। बड़े बड़े नेताओं के पास जनबल होता है, साहूकारों के पास धनबल होता है, जमींदारों के पास जमीन का बल होता है। ऐसे ही चाहे साहूकार हो चाहे जमींदार हो, पुरुष तो हैं, तो पुरुषों के पास पौरुष का वर्षा है। बड़े से बड़ा पौरुष का, पौरुष को ही वीर्य कहा जाता है। वो तो बड़े से बड़ी शक्ति है जिसमें पौरुष है, ओज है, वो बड़े से बड़े धन बल का स्वामी बन सकता है, जन बल का स्वामी बन सकता है, बड़े से बड़े नेता या राजा बन सकता है। दुनिया की सारी शक्तियां उसके पास आ जाएंगी। अगर उस शक्ति को छीन नहीं किया तो जो बाप भी कहते हैं ब्रह्मा के मुख से, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। कौन सी शक्ति के आधार पर है? कुमारों में क्या बड़ी से बड़ी शक्ति है जो चाहे तो दुनिया का विनाश करा दें, कर दें, और चाहे तो नई दुनिया स्थापन कर दें। क्या है शक्ति कुमारों के पास? हैं? वही वीर्य को संचित करके रखा है, भंडार बनाया है, इसलिए ऐसा बोला। वो है परम पुरुष, परम पिता। उसके पास बड़ी से बड़ी शक्ति क्या है? है ज्ञान, झूठ का ज्ञान या सच्चाई का ज्ञान? सच्चाई का ज्ञान माने सत्य। कहा भी जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। और गॉड इज वन, क्या 100% सच्चा एक या अनेक? एक। तो उसके पास सत्य की शक्ति है, लेकिन वो 5000 वर्ष से ज्यादा अपने में धारण करके रख सकता है? है? उसे आना ही पड़ेगा या वहीं बैठा रहे? आना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग वालों ने गीत बनाई दिए, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। उन्होंने कन्हैया को भगवान मान लिया। है वास्तव में भगवान की बात, ऊंचे से ऊंचे भगवंत की बात। वो परमपिता इस सृष्टि पर जब आता है तो जड़ प्रकृति का, पांच तत्वों का जो संघात प्रकृति कही जाती है नेचर, उसके सार को चुनता है या नहीं चुनता है? तो जो सार है जड़ प्रकृति का, उसको माता बनाता है। क्या बनाता? माता बनाता। वो माता पुरुष के मुकाबले बुद्धिहीन है या बुद्धिमती है? है? कोई भी माता पुरुष के मुकाबले जास्ती ताकतवर नहीं हो सकती। अंदरूनी जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसे सत्य कहा जाता है, जिसको धारण करने वाली माता सती कही जाती है, उस सत्य का विश्लेषण करने में पुरुष आगे जाते हैं या माताएं आगे जाती हैं? मोस्टली क्या देखने में आता है? अरे पुरुष आगे जाते हैं ना। बुद्धि के आधार पर ही सत्य का विश्लेषण होता है नहीं? अरे होता है। वो माताओं में वो शक्ति नहीं देखी जाती, और खास करके कलयुग के अंत में माताएं अबला बन जाती हैं और पुरुष प्रबल बन जाते हैं। गलत बात या झूठी बात? सच्ची बात, सच्ची बात। तो जड़ प्रकृति ही माता है और चैतन्य पुरुष ही पिता है। इन दो का जब संयोग होता है तो सृष्टि की शुरुआत होती है। संयोग, सम माने संपूर्ण, योग माने जोड़। उस परम पुरुष और परा प्रकृति, प्रकृति का सार रूप, उस पिता और वो माता, जिसके लिए गीता में भी कहा है मत योनि मात ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता मात ब्रह्म क्या है? पांच तत्वों में जो महान से महान तत्व है, महत्त्व, जिसको परम ब्रह्म नाम दिया, उस महत्तत्व में मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। मत योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्य हम, उसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है सत्य, काय का बीज डालता हूं, सत्य का बीज डालता हूं। वो सत्य सत्यम शिवम सुंदरम जो कहा जाता है उसके पास है, लेकिन फालतू जब तक वो प्रवृत्ति न बनाए तब तक कोई काम का नहीं। तो इस सृष्टि में आकर के वो ऐसी मनुष्य आत्मा को चुनता है जो दुनिया की सबसे चैतन्य आत्मा होती है, सबसे जास्ती चित शक्ति वाली, आदि में सबसे जास्ती चित शक्ति वाली चैतन्य, और अंत में कलयुग के अंत में जड़ बुद्धियों के संग के रंग में आते आते जड़त्वमयी बन जाती है या चैतन्य रहती है, है? जड़त्वमयी बन जाती है। सबसे जास्ती जड़त्वमयी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं रशिया की रहने वाली एटमिक एनर्जी तैयार करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं जो जिस डाल पर बैठी हैं, ऐसी जड़त्वमयी बुद्धि है उसी डाल को काट रही है। समझ में आया कैसे है? जिस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया को भस्म करने का उन्होंने बारूद बना लिया। तो मूर्ख है, जड़ बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि कहे है? महामूर्ख बुद्धि। तो उनका भी इस दुनिया में कोई बाप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ? होना चाहिए। वही मनुष्य सृष्टि का बाप है। क्या वो मनुष्य सृष्टि का बाप जो सृष्टि के आदि में मास्टर त्रिकालदर्शी बना था, शिव बाप कहते हैं मैं तो सिर्फ त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन तुम बच्चे नंबर वार मास्टर त्रिकालदर्शी। मास्टर माने प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी। तो जो आत्मा यज्ञ के आदि में इतनी चैतन्य की कि त्रिकालदर्शी थी, 84 के चक्र में भूत काल में भविष्य काल में वर्तमान काल में क्या होने वाला है, कब होने वाला है, ये सारी सच्चाई की शक्ति ज्ञान का भंडार किससे मिला था? आत्माओं के बाप से मिला था। वही आत्मा इंद्रियों के संसर्ग संपर्क में आने से सतयुग के आदि से ही
नीचे गिरती है या ऊंची उठती है? राधा कृष्ण को नीचे दिखाया, लक्ष्मी नारायण को ऊपर दिखाया। ये संगम युग है, ज्ञान की रोशनी ही इनका संसार है। नारायण, नार माने ज्ञान, जल आयन माने घर। कहाँ रहते हैं? ज्ञान प्रकाश के बलय को उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। पर दूसरा नाम दो भारत। भाव माने ज्ञान की रोशनी, ये चारों ओर ज्ञान की रोशनी में रत लगे रहने वाले हैं। ऐसी चैतन्य का है, 100% चैतन्य वही आत्मा रचना बनाती हैं। तो संपन्न रचना, 16 कला संपूर्ण रचना, ऊंचे से ऊंची रचना, ऊंची से ऊंची स्टेज में रहकर बनाती हैं या नीची स्टेज में रहकर बनाती है? ऊंचे से ऊंची स्टेज क्या है? ऊंचे से ऊंची स्टेज है अतीन्द्रिय सुख। जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से परे की स्टेज, इन ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों से कुछ लेना देना नहीं, ऐसी स्टेज बनाई है, कर्मातीत स्टेज जिसे कहा जाता है, उस स्टेज में रह करके इन्होंने, ध्यान से देखो, इनको भी और इनको भी, उस अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में रह करके इन्होंने राधा कृष्ण की इंद्रियों का सुख लेने वाली, इंद्रियों में भी ऊंचे से ऊंची इंद्रिय कौन सी? आंख का सुख लेने वाली सृष्टि रची। ये रचयिता ऊंचे से ऊंचा और ये रचना ऊंचे से ऊंची दुनिया की। रचयिता और रचना में फर्क होता है या नहीं होता है? यहां क्या फर्क दिखाया? ये ऊंचे से ऊंची स्टेज वाले, जहां इंद्रियों का कोई रस नहीं ले रहे हैं मन बुद्धि से, वो ऊंची से ऊंची स्टेज जब इनकी बनती है, तो ये दोनों एक रूप हो जाते हैं या दो चार रूप होते हैं? वो रूप कौन सा है जो दुनिया में सबसे जाति पूजा जाता है? दुनिया की खुदाइयों में सबसे जाति वो यादगार मूर्तियां मिली है, शिवलिंग। वो इनकी कंबाइंड स्टेज मनसा की है, मन बुद्धि का स्तर दोनों का एक हो जाता है। तो एक हुए या दो चार हुए? इसलिए खास भारत में मान्यता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वम माने एक संस्कृत में, यूयम माने दो, युवाम माने तुम सब अनेक, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। तो एक के लिए बोला या दो चार के लिए बोला? वो एक कौन है? दुनिया पूजा कर रही है, खुदाइयां कर रही है, बोलिंग में मूर्तियां मिलती भी हैं, लेकिन कोई नहीं जानता ये जो यादगार है इस सृष्टि का जो माता भी है पिता भी है। तुम एव माता, तुम माने तू एक मेरी माता, तुम एव पिता, तू एक ही मेरा पिता, दो नहीं, एक है या दो? एक। वो किसके लिए कहा गया? जो एक ही माता है, एक ही पिता है, एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है। भारतवर्ष में भगत लोग पूजा करते रहे, माथा घिसाते रहे, लेकिन माथा घिसाने वालों ने, पूजा करने वालों ने कभी ये जानने की चेष्टा नहीं की ये है कौन, कौन ये शिवलिंग कौन है, क्या है, कैसे है, इसकी पूजा क्यों की जा रही है, बस इतना जानते हैं। ये ऐसा ऐसा कर्म करता है जो माता पिता करते हैं। ज्यादातर विदेशी बच्चे जो होते हैं ना, मां पवित्रता का ज्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता, इसलिए विदेशी बच्चे अपने मां बाप को ऐसे ऐसे करते देख लेते। तो दुनिया ने ये जान लिया कि भगवान भी ऐसा कर्म करता होगा, उसी कर्म से संसार बनता है। जो कर्म भगवान ने कभी किया था, जो गाया जाता है खास भारत में वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही कुटुंब था, परिवार था, उस कुटुंब का, उस परिवार का एक ही कर्ता धर्ता था। जिसकी भारत में शिव के मंदिर में पूजा होती जा रही है, ये बात किसी ने नहीं जानी। अभी ये बात बाप का कहना है कि बाप का परिचय कौन दे सकता है? बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। क्या इस मनुष्य सृष्टि का त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो तू ही एक है, वो एक कौन है, उसका सही परिचय कौन दे सकता? बाप दे सकता। कौन सा बाप दे सकता? अरे बेहद के बाप तो दो है, कौन सा बाप दे सकता है? आत्मा का बाप दे सकता। इसका मतलब है उस आत्मा के बाप की सही यादगार, सात्विक स्टेज की भक्ति मार्ग की यादगार सोमनाथ मंदिर में बनाई गई थी। उससे पहले कोई मंदिर था यादगार? सोमनाथ मंदिर में वो यादगार बनाई गई। वो एक व्यक्तित्व है, जो मनुष्य मानवीय जो भी सृष्टि है, जिसमें पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं, सारे प्राणी, उस सारी शक्ति का वो बाप है एक। तो जो सोमनाथ मंदिर में एक बाप दिखाया गया, उसमें लिंग दिखाया गया पत्थर का, लाल पत्थर का लिंग, और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। तो वो हीरा किसकी यादगार है और वो लिंग किसकी यादगार है? हैं? हीरा हीरो पाटधारी की यादगार है। माना इस मनुष्य शक्ति का जो हीरो पाटधारी है, नारायण कहो, भारत कहो, प्रजापिता कहो, अधूरा रूप, वो पिता ही अपना परिचय देता है, शिव बाप परिचय नहीं देता। जो शिवलिंग है वो एक बाप है, जो सार्वभौम सारी भूमि में उसकी यादगार मिलती है खुदाइयों में। और शिव के मंदिर बनाए जाते हैं जहां पूजा होती है। इतना बड़े रूप में पूजनीय है, मान्यता प्राप्त, दुनिया में तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। कोई है? हैं? नहीं। तो जो बात है शिवलिंग, उस शिवलिंग का परिचय कौन सी आत्मा देती है? हाँ, मनुष्य शक्ति का बाप जब पुरुषार्थ करते करते, मनन चिंतन मंथन करते करते, अपने 84 जन्मों की पार्ट की जानकारी पर पहुंचता है, तिकालदर्शी बनता है, संपूर्ण योगी बनता है, शिव योगी बनता है। शिव योगी है, है? शिव योगी नहीं है। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो योगी है, योगी की सिद्धि प्राप्त करता है। तो तब ही वो सिद्धि प्राप्त करता है जब वो योग में निरंतर योग की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा योगी जिसके योग बल में कोई अंतर न पड़े। अभी हम और आप याद में बैठते हैं, साकार और निराकार का मेल माने योग, शिव बाबा को याद करते हैं तो निरंतर याद करते हैं, अमृत वेले से ही 3-4 घंटे लगातार याद करते हैं, 80 साल हो गए बाप को परिचय देते देते, तो निरंतर याद करते हैं या अंतर पड़ जाता है? हैं? कोई हो ऐसा जिसकी अमृत वेले की याद में, योग में, निराकार और साकार के योग में अंतर न पड़ता हो? आप उठाओ। हैं? कोई नहीं? क्या विश्वास है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कोई तो होगा? क्या जिसकी याद में जिससे कि योग में कोई अंतर न पड़ता हो, ऐसा विश्वास है? कोई होगा है? अरे भाषा नहीं समझ में आती है? कोई होगा? जरूर होगा। अच्छा, फिर ये क्यों कहा? ब्रह्मा मुख की ब्रह्म वाक्य में ही बोला, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। चालीस से 50 वर्ष ज्यादा से ज्यादा। वो 40 वर्ष अभी पूरे हो गए, होने वाले हैं। वो होने वाले होने से पहले ही कोई संपन्न बन गया, निरंतर याद करने वाला बन गया? अब तो आपने कैसे बोल दिया, जरूर कोई होगा है? होगा कोई निरंतर याद करने वाला? कोई होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता। पूरे 40 साल ये पूरे हों, जैसे संक्षेत्र के लिए बोला था, क्या बोला था? आत्मा रूपी सुई की बेसिकली सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे, बीच में अम्मा का रूप नहीं। क्या तो जिस समय बोला था, ब्रह्मा मुख से बोला था, उस समय तो कट उतरने का सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि बता दिया। अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। तो जब अमृत ही तैयार नहीं हुआ, तो सदा काल के निश्चय बुद्धि कहे जा सकते हैं है? नहीं कहे जा सकते। तो 40 साल कब पूरे होते हैं? कब हुए पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में है? कट कब उतरी, उतरना शुरू हुई? 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ऐसे आत्मा, ऐसे ऐसी मनुष्य आत्माएं निकली ब्राह्मणों के रूप में, जिनकी आत्मा की कट विकारों की उतरना शुरू हुई। बेसिकली जब आत्मा की कट उतरती है, तो आत्मा मनन चिंतन मंथन में मस्त होगी। उस समय के लिए बोला कि सन 36 से लेकर 76 तक आज ब्रह्मा के 40 साल पूरे हुए, और ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास हुआ। कौन से ब्रह्मा का? परम ब्रह्म का। मृत्युलोक पूरा हुआ तो कौन सा लोक शुरू हुआ? अमर लोक शुरू हो गया। मानो अमर लोक शुरू हो गया। ये क्या बात हुई है? अमर लोक शुरू हो गया का मतलब, पहले दुनिया में जो भी कार्य होते हैं सूक्ष्म रूप में संपन्न होते हैं या स्थूल रूप में संपन्न हो जाते हैं? है, सूक्ष्म रूप में संपन्न होते हैं।
मकान हो, दुकान हो, कारखाना हो, पहले बुद्धि में नक्शा आएगा, फिर कागज पे बनाया जाएगा, फिर मॉडल तैयार किया जाएगा, फिर इस स्थूल में मकान बनाया जाएगा। क्या पहले सूक्ष्म, फिर बड़ा रूप विस्तार। तो ऐसे ही जो नई दुनिया का नक्शा है, आत्मा विकारों से लैस हुई, वो मन के अंदर से शुरुआत होगी, संकल्पों से, कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से शुरुआत होगी। मन से शुरुआत, माने कोई मनुष्य आत्मा संक्षेत्र से ऐसी तैयार होती है कि उसके मन से विकारी संकल्पों का आना खत्म। ज्ञान युक्त संकल्प ही आएंगे। मुरली के महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन ही के संकल्प आएंगे। नई दुनिया की प्लानिंग के संकल्प आएंगे और ईश्वरीय सेवा के संकल्प आएंगे। बुरे संकल्प माने विकारी संकल्प आना खत्म। इसलिए बताया कि नई दुनिया की स्थापना छत्तर में और पुरानी दुनिया का विनाश नीचे लिखा हुआ है, लक्ष्मीनारायण के चित्र के नीचे। 10 वर्ष में 66 में मुरली बोली गई, 66 में नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो मन के अंदर की बात है या स्थूल दुनिया की स्थापना विनाश की बात है? कोई आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, जिसके अंदर से वो पुरानी दुनिया का विनाश और उसमें भी खास ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश, आप मुए मर गई दुनिया, उस पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया से हमें कुछ लेना देना नहीं। किसे लेना देना है? हैं? कुछ लेना देना नहीं। जैसे ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, कैसे संकल्पों से सृष्टि रची, ज्ञानेंद्रियों से नहीं, कर्मेंद्रियों से नहीं, द्वैतवादी द्वापर युग से जैसे रची जाती है। कैसी सृष्टि रची है? संकल्पों की सृष्टि, ज्ञान युक्त संकल्पों की सृष्टि। वो मनन चिंतन मंथन की शक्ति, उस शक्ति से ब्राह्मणों की शक्ति रची गई। कैसे ब्राह्मण? वही ब्राह्मण, असली ब्राह्मणों की शक्ति, जो अतीन्द्रिय सुख की सृष्टि में संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। कैसे ब्राह्मण है? अतीन्द्रिय सुख की लास्ट स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। अभी वर्तमान में भले 63 जन्मों के हिसाब किताब के कारण इंद्रियों के सुख की लालसा है, लेकिन फिर भी कैसे पुरुषार्थी हैं? किस बात का दृढ़ निश्चय लेकर बैठे हैं? हमें कहाँ तक पहुँचना है? है अतीन्द्रिय सुख लेने की स्टेज तक पहुँचना है। ऐसे ब्राह्मणों की शक्ति रची जाती है, जिनका टाइम भी बता दिया 40 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 50 साल। 40 साल में तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे। तो बाप की दृष्टि अपने राजा बेटा बच्चों के ऊपर होगी या प्रजा वर्ग में आने वाले बच्चों के ऊपर होगी? और राजाएं कितने? 9 लाख। अरे 9 लाख तो प्रजा है, राजा बनने वाले तो 108 ही हैं। और वो जो राजाएं हैं वो अकेले राजा ही थोड़े ही करते हैं, राज्याधिकारियों के द्वारा राजा ही चलाते हैं या अकेले ही सारा काम करते हैं? तो राज्याधिकारियों को भी कुछ कंट्रोलिंग पावर मिलती है या नहीं मिलती है? है? मिलती है। तो जिन राज्याधिकारियों को या राज परिवार के सदस्यों को, राज परिवार में भांति होते हैं ना, कोई बड़ा बच्चा, कोई छोटा बच्चा, कोई बड़ी बच्ची, कोई छोटी बच्ची, उनकी कुछ भी कंट्रोलिंग नहीं होती राज्य में है? होती है। तो उस राज्य में जो भगवान राज्य स्थापन करते हैं, राजाओं की दुनिया, उसमें टोटल मिला के 21 जन्मों में 16,108 राजाई की ताकत लेने वाले तैयार होते हैं, जो अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। किस आधार पर? राजयोग के आधार पर। कैसा योग? राजयोग तो है, तो राज गुप्त होता है या राज प्रत्यक्ष होता है? है? राज की बात तो गुप्त होती है। छोटे छोटे बच्चे, बेसिक नॉलेज लेने वाले राज की बातों को समझते हैं? नहीं समझते। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बुद्धि एडवांस हो जाती है, तो राज की बात समझते हैं। बालिक बच्चे के नाबालिग समझते हैं, बालिग समझते हैं। तो ऐसे बालिग बच्चे जो समझते तो हैं, दूसरों को समझाए भी सकते हैं, सुनते तो हैं, दूसरों को सुनाए भी सकते हैं, लेकिन स्वयं भी राजयोगी की लिस्ट में नहीं आ पाते। जो भगवान बाप के साथ गुप्त संबंधों का राज समझ सके, संबंध के आधार पर ही संघ का रंग लगता है। जो संबंध जितना गहरा होगा, राजदार संबंध होगा, उस संबंध में ज्यादा याद आएगी या दूसरे संबंधों में ज्यादा याद आएगी? है? तो कौन सा संबंध है जिसमें सबसे जास्ती राज भरा हुआ है? बताओ, जिस संबंध के आधार पर सबसे जास्ती याद आती है, है? साजन सजनी का संबंध,
सहजन और सहजननी। सह माने साथ, जन माने मनुष्य। कैसे मनुष्य? साथ निभाने वाले। कैसे? साथ निभाने वाले जीवन भर होंगे तो नंबर वारी एक जैसे होंगे नहीं, क्योंकि बोला है वेदवाणी में ही, बोला ब्रह्मा के मुख से निकली वेदवाणी में कि संबंध जोड़ना तो सहज बात है, लेकिन संबंध है निभाना, इसी में नंबर बनते हैं। जो आज से लेकर के जब से संबंध जोड़ा परमपिता परमात्मा के साथ, तब से लेकर अंत तक पुरुषार्थी जीवन में एक के साथ संबंध निभाए, कोई दूसरे के साथ संबंध न निभाए। कौन सा संबंध है? साजन और सजनी का। जो बहुत गहरा संबंध है, इतना गहरा संबंध है कि सतयुग के आज से लेकर कलयुग के अंत तक स्त्री जाति याद करती है उस संबंध को, जिस संबंध से उसने जीवन भर सुख लिया है इंद्रियों के द्वारा, अंत समय में वो ही संबंध याद आ जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। पुरुष को स्त्री का रूप याद आएगा और स्त्री को पुरुष का रूप याद आ जाता है, तो अंतमते सोगति हो जाती है। ऐसा गहरा संबंध है, उसके लिए बोला संबंध जोड़ना तो सहज है लेकिन निभाना, निभाने में नंबर वार हो जाते हैं। तो नंबर वार की लिस्ट में भी जो आते हैं, संबंध जोड़ते हैं, पूरा नहीं जोड़ पाते पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार, कुछ न कुछ जोड़ने की हिम्मत करते हैं या नहीं करते हैं? तो हिम्मत है बच्चे, बाप मदद करता है। कैसी मदद? तुम बच्चे एक कदम आगे आते हो तो मैं 100 कदम आगे बढ़कर के तुम्हें सहयोग देता हूं। माना जो बच्चे हिम्मत करते हैं एक बार सरेंडर होने के लिए, क्योंकि कौन सा संबंध है जिसमें संपूर्ण समर्पण हो जाता है? बाप बेटी का संबंध है, बेटी तो दूसरे घर चली जाती है, संपूर्ण समर्पण होता है नहीं होता है? कोई भी संबंध इतना संपूर्ण समर्पण नहीं होता जितना साजन सजनी और बाप और बेटा, बड़ा बेटा बूढ़ी। छोटे बच्चों में इतनी शक्ति की ताकत नहीं होती लंबे समय की। तो जो हिम्मत करते हैं ऐसे अर्पण होने के लिए, भले नंबर वार की लिस्ट में आते हैं तो भी 16,000 की लिस्ट में आ जाएंगे। शर्त है कि बीच में क्या, बीच में अनिच्छे बुद्धि होकर भाग न जाओ, क्योंकि बाहर की दुनिया में भागेंगे तो उनकी पवित्रता का कोई है गारंटी है? गारंटी नहीं। इसलिए बताया जो समर्पण होने के बाद ईश्वरीय सेवा में भाग जाते हैं वो
जो राज परिवार है 16,000 का, उसमें दास दासी बनेंगे। अगर ग्लानी की जाकर के बाहर तो चांडाल बनेंगे, और समर्पण नहीं हुए, बाहर की दुनिया में रहते हैं, अपन को समझते हैं कि हम सरेंडर होकर चलेंगे, फिर अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, तो प्रजा वर्ग में दास दासी बनेंगे, राज वर्ग में दास दासी नहीं बनेंगे। और बाहर जाकर के ग्लानी करते हैं तो चांडाल बनेंगे, प्रजा वर्ग के या राज परिवार के, प्रजा वर्ग के चांडाल बनेंगे। तो ऐसी 16,000 जो आत्माएं हैं वो गुप्त संबंध जोड़ने वाली गोप और गोपियां बनते हैं, जिनका शास्त्र में गायन है। क्या गायन है? कितनी गोप और गोपियां जो अतीन्द्रिय सुख भोगती हैं, कितनी? 16,108 आत्माएं। तो 16,108 आत्माएं हैं जो राजयोग सीख करके राज परिवार में लंबे समय तक, अनेक जन्मों तक सुख भोगती हैं। क्या ये हो सकता है? कि आदि में राजा और रानी के परिवार में नजदीक रह करके पाठ बजाएं, या ये भी हो सकता है कि 21 जन्म के अंत में राजा रानी बन जाएं, सबसे गिरती कला के राजा रानी, या 21 जन्मों में जो अव्वल नंबर सत्युग के आदि के जन्म है उनमें राजा रानी, कीर्ति कला के राजा रानी, लास्ट जन्म में कोट पतलून मिल जाएगी, मानी मर्तबा मिल जाएगा, पहले जन्म में उनको दास दासी बनना पड़ता है। अगर ब्राह्मणों के संगमयुगी जीवन में उन्होंने बाप का बच्चा बनकर के आदि से लेकर आदि में तो सहयोग दिया थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में लगातार विरोध किया अंत तक, तो सतयुग त्रेता के पहले जन्म से लेकर के और अंतिम जन्मों तक वो दास दासी ही बनकर रहेंगे, अंतिम जन्म में जाकर राजा बन जाएंगे छोटे मोटे। और यही क्रम फिर द्वापर और कलयुग में चलता रहेगा, माना 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी प्राप्ति होती है। जो आत्माएं सत्युग के आदि में ऊंच पद पाती हैं, त्रेता के आदि में भी ऊंच पद पाएंगी, जैसे राम सीता वाली आत्माएं सत्युग के आदि संगम में विश्व के बादशाह और त्रेता में भी बादशाह, और द्वापर के आदि में भी ऊंचे से ऊंचे मान मर्तबे वाले राजा विक्रमादित्य और उनके गुरु, और कलयुग के आदि में भी राजा ही बनेंगे या दास दासी बनेंगे? राजा ही बनेंगे।
और जो आत्मा है सतयुग के अंत में लोन लेकर राजाई चलाती है, वो त्रेता के अंत में भी वजन अपने ऊपर चढ़ा के जाएंगी या हल्की होकर जाएंगी? है वजन चढ़ा के जाएंगी, क्योंकि वो स्वर्ग को नष्ट करने वाले निमित्त बनेंगे या स्वर्ग को अच्छे से पालना करने के निमित्त बनेंगे? और वो ही क्रम उनका फिर द्वापर और कलयुग में चलेगा। द्वापर के अंत में वैसा ही नीच पद और कलयुग के अंत में भी वैसे ही छोटे मोटे राजा। आज समाजी जो राजा नाम मात्र के बनते हैं, क्या टाइटल तो मिल जाता राजा का, लेकिन राजा बाजा कुछ होते नहीं है। या तो 4-5 साल के लिए बहुत करके हो तो प्रधानमंत्री मंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे अंतिम जन्म में। तो ये हिसाब है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस अंतिम पुरुषार्थ की जीवन में राष्ट्रपति पद मिले तो तुम क्या करेंगे? हाँ? राष्ट्रपति पद धारण नहीं करेंगे, क्यों?
अल्पकाल के लिए ना, अल्पकाल के लिए हम करेंगे।
हाँ, वो अल्पकाल की राजाई क्या है? कांटों का ताज है। क्या? कांटों का ताज। जैसे कांटे लगते हैं ना सर में, ऐसे बुद्धि को कांटा लगाते रहेंगे, दुख देते रहेंगे, चारों तरफ से चौं चौं करते रहेंगे, चैन की नींद तुमको सोने भी नहीं देंगे। तो बताया क्या बनना है शिव जयंती पर? है बड़े से बड़ा बनना है या छोटे से छोटा बनना है? बड़े से बड़े बाप के बच्चे तो बड़े से बड़े बनेंगे या छोटे बनेंगे? बड़े से बड़े बनेंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे ऊंच बनेंगे या नीच बनेंगे? ऊंच बनेंगे। तो पहले जन्म की बात बताई, जब नई दुनिया बनेगी, दुनिया की 100% नई राजधानी स्थापन होगी, जिस राजधानी के लिए बाप ने बोला है, ऊंचे से ऊंचे बाप ने, कि जब मैं आता हूं तो दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या? मेरे आने पर देर नहीं लगती है राजधानी स्थापन होने में। क्या देर लगती है? देर लगे तो सर्वशक्तिवान हुआ है? मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे नहीं? दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन करता हूं। और भी बोला, 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिल जाती है। ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का बाप का वर्षा है। क्या वर्षा है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति का वर्षा कौन देता है? कौन सा बाप देता है? धनवान रहा बाप होगा तो धन का वर्षा देगा, जमींदार बाप होगा तो जमीन का वर्षा देगा। क्या? ज्ञान का भंडारी बाप होगा तो काय का वर्षा देगा, ज्ञान का वर्षा देगा। और स्वर्णिम सत्युग के आदि की सुख की दुनिया का वर्षा कौन देगा? जो बाप जमींदार है, जमीन का भोग खुद करता रहा हो, धनवान बाप है, धन का भोग खुद करता रहा हो, तो दूसरों को देगा या खुद अधिकारी नहीं हुआ तो दूसरों को दे देगा? है? खुद अधिकारी होगा तो वर्षा भी बच्चों को देगा। तो बताओ वेद के दो बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्य शक्ति का बाप, कौन से बाप का परिचय देने के लिए मुरली में बार बार बोलते हैं? बच्चे त्रिमूर्ति शिव के चित्र में पहले पहले बाप का परिचय दो, लेकिन बच्चे तिक तिक करते रहते हैं मुरली में बार बार क्या बोलते हैं? बच्चे तिक तिक बहुत करते हैं लेकिन बाप का परिचय नहीं दे पाते। इसका मतलब बच्चों ने बाप को पहचाना होगा, उस एक बाप को जो माता भी है जो पिता भी है। तुम मां सहायक जिसे कहते ना, सर्व संबंधी हो, उस बाप को खुद ही नहीं पहचाना होगा तो दूसरों को परिचय दे सकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 साल हो गए अभी तक किसी ने बाप को पहचाना ही नहीं। बाप की वो मूर्ति त्रिमूर्ति के चित्र में किसी के जहीन में ही नहीं आई। हाँ? आई या नहीं आई? हाँ? नहीं आई। क्यों नहीं आई? 80 साल हो गए ज्ञान लेते लेते और भक्ति मार्ग में 2500 साल उसकी पूजा की, उसे एक बाप की जिसे हम कहते रहे सर्व संबंधी हो, तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव, बंधु हो सखा हो सब कुछ तुम हो, बोलते भी है एक शिव बाबा दूसरा न कोई। आत्माओं के बाप शिव बाप ने भी बता दिया इस शक्ति पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक शिव बाबा ही है जो साकार और निराकार का मेल है। फिर परिचय क्यों नहीं दे पाते? बाप प्रत्यक्ष हुए नहीं।
आज निश्चय बुद्धि है, कल अनिश्चय बुद्धि। आज निश्चय बुद्धि है बाप में,
किसके ऊपर निश्चय बुद्धि? शिवलिंग के ऊपर। कोई ने जाना कि बाप का यादगार शिवलिंग है? जो विश्व पिता है उस विश्व पिता के हम बच्चे हैं, सारी दुनिया उसी बाप से निकलती है। परिवार में बच्चे कहाँ से आते हैं? हैं? छोटे छोटे बच्चे कहेंगे माँ से आते हैं। हैं? राजदार बच्चे होंगे तो कहेंगे बच्चे कहाँ से आते हैं माँ के पेट में? बाप से आते हैं।
तो वो बाप, वो एक बाप कौन है जिसमें से सारी दुनिया का जन्म होता है, वो सारी दुनिया का बाप है। जड़ हो, जंगम हो, चैतन्य हो, जड़ हो, सबका बाप है। उसे एक बाप से ही, जैसे मनुष्य सृष्टि में पहले जड़त्व में ही पिंड आता है, बाद में उसमें आत्मा आती है, और दोनों के इकट्ठे होने के बाद फिर बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। ऐसे ही ये दुनिया की जो परंपरा है, क्या पहले जड़ पिंड का सार आता है, रज और वीर्य का मेल आता है, बाद में जब वो संपूर्ण पिंड तैयार होता है, हाथ पांव नाक आंख कान वाला, तब उसमें आत्मा आती है। और आत्मा भलाई तो भी ये नहीं कहते कि जन्म लिया बच्चे ने, कहते हैं नहीं, तब कहते हैं जब वो पिंड में प्रवेश हुई चैतन्य आत्मा, दोनों का मेल, साकार पिंड और निराकार आत्मा का मेल बाहर आता है, गर्भ से सारे संसार के सामने आता है, जो वाणी में भी बोल दिया, जो इन कानों से सुने दो शब्द भी, जो इन आंखों से देखे उसके मुख से अनायास और एवरलास्टिंग ये बात पक्की हो जाए कि मेरा बाप आ गया। जैसे दुनिया में बच्चा आता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति भी कान से सुनता है वहां वहां की आवाज, और पक्का मान लेता है कि पड़ोस में बच्चा आया, और इन आंखों से जब आके देखता है तो भी क्या कहता है कि बच्चा आया। और फिर जो भी आते जाएंगे नजदीक से दूर वाले, वो सब क्या कहेंगे, आया या नहीं आया, आया। तो ऐसे ही सन 36 में वो जड़ रथ जो जड़ तुम्हें टोटल 100% पत्थर बुद्धि हो जाता है, क्या हो जाता है, टोटल पत्थर बुद्धि हो जाता है, उस पत्थर बुद्धि में वो आता है जिसे माता बनाता है, जड़त्व में आता है या चैतन्य बुद्धि में आता है, है? जड़त्व में आता है, और आते ही उसमें ज्ञान का अति सूक्ष्म बीज डालता है। वो बीज वृद्धि को पाते 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 चालीस साल पूरे होते हैं परम ब्रह्म के, तो मृत्युलोक से निकल करके कहाँ आ जाता है? मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा कुमारियों में बड़े धूमधाम से मनाया गया वो वर्ष, क्या नाम है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। लेकिन ये किसी ने नहीं जाना, ब्राह्मणों की दुनिया में भी किसी ने नहीं जाना कि कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। शिव बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ या मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ या शैतानों के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ या देवात्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, कोई ने पक्का जाना है? नहीं जाना। इसलिए बताया कि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तो कौन सा बाप है जो मनुष्य सृष्टि के सभी प्राणियों को, सभी मनुष्य मात्र को मनुष्य सृष्टि के पिता का परिचय देता है? वो परिचय, पूरा परिचय बल ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी में भी दिया हुआ है। क्या वेदवाणी में दिया हुआ है या नहीं है? दिया हुआ है। उसके बावजूद भी उस वेदवाणी को, उस गीता ज्ञान को ज्ञानामृत का टाइटल नहीं दिया शिव बाप ने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ब्रह्मा मुख से जो भी महावाक्य निकले उनका कोई ने मंथन मंथन नहीं किया और मंथन करके उसकी व्याख्या नहीं की। क्या इसलिए बोला, वाणी में ही बोला। अब देखेंगे राख कौन बनते हैं। क्या राख कौन बनते हैं? कोटों में से एक, लाखों में से एक पौन निकलते हैं, ये भी देखेंगे। जो वेदवाणी की, गीता ज्ञानामृत की मंथन करके व्याख्या करके दिखाएं, जो शास्त्रों में भी व्याख्याकार प्रसिद्ध है, कौन है वो व्याख्याकार है? ठीक है, विमाने विशेष आसवने बैठ गया। किस काम के लिए बैठ गया? ये किस काम के लिए बैठ गया? यानी कि रोशनी के लिए बैठ गया। लेकिन ज्ञान की रोशनी, क्या बेसिक ज्ञान ब्रह्मा के मुख से नहीं निकला था? है? निकला था। तो ब्रह्मा को नहीं कहेंगे ये ज्ञान के लिए बैठ गया? अरे दादा लिख रहे हैं, ब्रह्मा को कहेंगे या नहीं? हैं? क्यों? हैं? बैठ तो गया लेकिन ना उसकी समझ में आया जो बैठ गया, ना उनके फॉलोअर्स की समझ में आया कि वो जो मनुष्य शक्ति का पिता है, जो इस मनुष्य शक्ति में ऊंचे से ऊंचे गाया हुआ है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह, अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा। हेवनली गॉड फादर अंग्रेज लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हेवनली गॉड फादर। कौन हुआ हेवनली गॉड फादर? स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेवनली गॉड फादर कौन है? स्वर्ग बनाने वाला कौन? जो सदा स्वयं स्थिति में रहता है वो, या वो जो राजयोग की प्रैक्टिस करके सदा स्वयं स्थिति में स्थिर हो जाता है, निरंतर याद की स्थिति में स्थित हो जाता है, वो जो निरंतर योगी बनता है, दुनिया का बड़े से बड़ा योगी बनता है। किस दुनिया का? इस दुनिया का या उस दुनिया का? है? उस दुनिया में योगी नहीं है कोई, क्यों? वहां तो योग लगाने की दरकार है ही नहीं, और योग लगाए तो किससे लगाए? हैं? किससे लगाए? आत्मा आत्माओं से योग लगाए, मेल मेल से योग लगाए हैं? नहीं, ये तो इस दुनिया की बात है। जो बड़े से बड़ा योगी सो ही बड़े से बड़ा भोगी बनता है। जो इस दुनिया में ऊंचे से ऊंचे बनता है वो ही इस दुनिया में क्या बनता है? नीचे से नीचे बनता है। इसलिए बोला कि पतितम कामी कांटे में आता हूं, जिससे कोई ज्यादा पतित हो ही नहीं सकता, जिससे ज्यादा पत्थर बुद्धि कोई हो ही नहीं सकता। अरे इस दुनिया में कोई से कहो कि जगत पिता शंकर को कहा, आदिदेव शंकर को कहा, वो बड़े से बड़ा पतितम कामी कांटा है, मानेंगे है? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जानते ही नहीं है कि शंकर भगवान नहीं है, देवता है। भगवान तो देवता बनाने वाला है या खुद देवता है? है? बनाने वाला है। तो बनाने वाला ऊंचा या देवता बनने वाला ऊंचा? बनाने वाला ऊंचा। और जो महादेव शंकर कहा जाता है वो महादेव शंकर 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, संपूर्ण देवता। अरे 16 कला संपूर्ण कहते हैं? हैं?
शंकर पुरुषार्थ है।
हाँ,
तो 16 कला संपूर्ण नहीं है, उसमें प्रवेश करने वाला सदाशिव क्या बनाता है? 16 कला संपूर्ण बनाता है। तो जो स्वयं 16 कला संपूर्ण है ही नहीं, वो अधूरा है या संपूर्ण है? है अधूरा है, पुरुषार्थी है या संपूर्ण पुरुषार्थी, संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता है, पुरुषार्थी है। दुनिया वाले इस बात के राज को नहीं जानते कि शिव अलग आत्मा है और शंकर अलग आत्मा है। शिव वो आत्मा है जो गीता में अक्षर कहा गया, कभी चरित नहीं होता, और शंकर वाली आत्मा वो आत्मा है जो इस सृष्टि के जितने भी प्राणी मात्र हैं उन सबसे बीच सबसे जास्ती चरित होने वाली आत्मा है। बोलो, चरित होने वाली माना पतित होने वाली, शक्ति छीन करने वाली, अपनी शक्ति का बंटवारा कर देने वाली, शक्ति बिखर जाती है या इकट्ठी हो जाती है? विषपाई जो कहा जाता है, तो विषपाई की, विष पीने वाले की शक्ति बिखरेगी या संचित होगी? है बिखर जाती। ऐसी शक्ति बिखरती है कि बिखरते बिखरते टोटल पत्थर बुद्धि बन जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि को वो बाप पारस बुद्धि बनाता है, योग बल का रास्ता सिखाकर, योग बल की युक्ति देता है, योग बल का ज्ञान देता है या विश्व की बादशाही देता है? है योग बल की युक्ति देता है, जिस योग बल को संपन्न रूप में अभ्यासी बनने के बाद विश्व का मालिक बनता है। स्वयं पुरुषार्थ से बनना पड़ता है या कोई दे देता है? है स्वयं पुरुषार्थ से बनना पड़ता है। अगर वो आत्माओं का बाप, अखूट ज्ञान का भंडार, वो आकर के विश्व की बात का ही एक को दे दे, एक आत्मा को, तो सब क्या कहेंगे? पार्शियलिटी हो गई। इसलिए जो जितना करेगा उतना भरेगा, जो अभ्यास करेगा वो पाएगा। अभ्यास न तो कौनते है वैराग्य च गृह्यते। हे अर्जुन, राजयोग के अभ्यास से और वैराग माना संन्यास से संपूर्ण त्याग, तन का, मन का, धन का, समय का, संपर्क का, संबंधियों की ताकत लगा करके भी, संबंधियों की ताकत होती कि नहीं है, वो संबंधियों की ताकत भी लगा करके जो योगी बनता है उसमें ज्यादा पावर आती है। सारी ताकत लगाई, धन की ताकत नहीं लगाई, क्या किया? धन की ताकत नहीं लगाई, धन की ताकत कुछ बड़े बच्चे को दे दी, कुछ बड़ी बच्ची को दे दी, कुछ छोटे बच्चों को दे दिया, कुछ नाते रिश्तेदारों को दे दिया, कुछ किसी को दे दिया, क्योंकि अंदर अनिश्चय बैठा हुआ है, पता नहीं ये यज्ञ सफल होगा, स्वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मान लो न बना तो हम कुलांत मार जाएंगे, क्या करेंगे है? कहां चले जाएंगे? अरे जिनको हमने तन या जिनको हमने धन की ताकत सौंपी है वो हमें कुछ रोटी टुकड़ा देंगे या नहीं देंगे है? देंगे। तो बताया जितनी मनुष्य आत्मा के पास शक्ति है वो सब प्रकार की शक्तियां उसे यज्ञ कुंड कहो, धर्म क्षेत्र कहो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कर्मों का क्षेत्र कहो, कौन कौन है युद्ध क्षेत्र, कौन है धर्म क्षेत्र? क्षेत्र माने युद्ध का मूल स्थान, जहां सब कुछ स्वाहा करना है, स्वा कुछ भी हो, पैसे हो, ये तन हो है, संबंधियों की ताकत हो, समय की ताकत हो, मन की ताकत हो, सब कुछ स्वा, हाँ स्वा माने मेरा, आग में डाल दिया हाँ सब चल गया, कुछ नहीं मेरे पास बचा, तन धन धाम सुहृद परिवार सबके ममता ताग बटोरी, तन हो धन हो धाम हो कुछ भी ताकत हो, सब में जो ममता है ममत्व है वो ममत्व को खींच करके ईश्वर में अर्पण कर देना। ऐसी आत्माएं योग की सिद्धि को जल्दी प्राप्त करेंगी, माने संपूर्ण न्यास, संन्यास, सम माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग, और फिर प्रैक्टिस बार बार याद करो, मैं आत्मा, मेरा बाप परम पाटधारी परमात्मा, भूल गए? फिर याद करो, फिर याद किया, फिर भूल गए, फिर याद करो, तो ये क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास करो। ऐसा अभ्यास करने से, निरंतर अभ्यास करो, क्या देखना है कि हम कहां तक निरंतर तक पहुंचते हैं। एक मिनट में 7 सेकंड होते हैं, उस 7 सेकंड में कितने सेकंड हम निरंतर अभ्यास में रहे? कौन सा अभ्यास? मैं आत्मा, मेरा बाप, साकार निराकार का मेल, दोनों एक, ये हुआ मनमना भव। ऐसा मनमना भव कहने वाला कौन? निराकार, उसको तो मन है ही नहीं, वो तो सदा मन है, वो कभी बेचैन होता ही नहीं। तो वो जिसमें प्रवेश करता है उसका मन है। उसका दिल है, उस मन में समा जा। अरे संगम युग के अंतकाल में संपन्न स्टेज जब उसकी बनती है मनुष्य शक्ति के बाप की, तो उसके मन में क्या होता है? उसके मन में होता है मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप ज्योति बिंदु। अरे इसको तो योग नहीं कहेंगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरी ज्योति बिंदु निराकार आत्मा का बाप ज्योति बिंदु। निराकार का निराकार के साथ योग लगाना है, ऐसे बोला? मुरली में बोला तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी, माना आवेगी भविष्य में या अभी? भविष्य में एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि तेरी बुद्धि में बाबा कहने से अपना ही साकारी रूप और अपनी ही ज्योति बिंदु आत्मा जो शिव समान बन गई, बन जाती है, जो शिव का विरुद्ध है कि मैं आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बना कर जाता हूं। तो नंबर बार आप समान बनेंगे, एक साथ सब इकट्ठे बन जाएंगे, तो जो नंबर बार मैं अव्वल नंबर बनता है वो ही साकार निराकार का मेल हो गया। निराकार आत्मा शिव समान है, शिव नहीं है, क्या है? लौकिक दुनिया में भी कहा जाता है बड़ा बच्चा बाप समान है कि बाप है, बाप समान है बाप नहीं है। कोई बच्चा ऐसे कहेगा मैं ही बाप हूं क्या? शिवाय कुमार का दादी थे, बड़े बड़े पोस्टर छपा देंगे, तीन मूर्तियों का चित्र रख देंगे, नीचे गुलजार दादी, बीच में जानकी दादी, ऊपर कुमार का दादी और ऊपर ज्योति बिंदु। पब्लिक को समझाएंगे ब्रह्मा ही साकार भगवान है, गीता का भगवान, और अलग से विष्णु और शंकर कुछ भी नहीं होते। ऐसे ही समझाते हैं कि दूसरा समझाते हैं? हैं? ऐसे ही समझाते हैं। तो देखो जो बड़े से बड़ा है इस सृष्टि में, ऊंचते ऊंचे है इस सृष्टि में, साकार दुनिया में, उसकी शिवलिंग के रूप में मंदिरों में पूजा हो रही है, वो सारी दुनिया के लिए अज्ञात है, कोई उसको जानता नहीं है, मानते हैं लेकिन जानते नहीं, तो कौन जानता है? वो, हाँ वो निराकार बाप ज्ञान तो देता है ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन बेसिक ज्ञान देता है या उस ज्ञान की गहराई विस्तार देता है, व्याख्या देता है, हैं? बेसिक ज्ञान देता है ब्रह्मा द्वारा, विस्तार नहीं देता, देता है, इसीलिए उसको सुप्रीम टीचर कहा जाता है। वो बाप भी है, वो परम ब्रह्म में माता भी है, और उस माता में जो 40 साल के बाद गर्भपिंड तैयार होता है, पत्थर, क्या पत्थर बुद्धि, वो गीतों में गाए देते हैं। बन के पत्थर हम पड़े थे, सूनी सूनी राह में आन कर तूने जगाया, ऐसे ऐसे गीत बनाए दिए। ये वास्तव में किसका गीत है? नंबर वन हम बच्चों का गीत है। क्या हमारा बाप पत्थर बुद्धि तो हम भी पत्थर बुद्धि। वो बड़ा पत्थर बुद्धि, ग्रेनाइट पत्थर। क्या ग्रेनाइट पत्थर? तो दूसरे कोई अच्छे पत्थर होंगे, संगमरमर। बुद्धि से संग करते होंगे लगातार, मरमर के संग करते होंगे। साकार में मिलता नहीं लक्ष्मी जी महारानी को। क्या लक्ष्मी को साकार में मिलता है? हैं? मिलता है? नहीं मिलता। तो मरमर के संग करती है बुद्धि से, या जिंदा दिली से करती है? मरमर के करती है। तो नाम पड़ गया उस पत्थर का संगमरमर। व्हाइट होता है कि नहीं होता है? संगमरमर व्हाइट होता है ना, काला नहीं होता? अरे काला भी होता है कि नहीं? संगमरमर नहीं काला होता है? काला भी होता है और व्हाइट भी होता है। तो वो काला है महाकाली। क्या महाकाली? और भाई थे है? है महागौरी। तो महाकाली हो माता का साकार रूप, या महागौरी हो माता का चैतन्य रूप, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो लक्ष्मी कही जाती है कि महालक्ष्मी? फिर उसको कहते हैं महालक्ष्मी। वो महालक्ष्मी और वो नारायण जिसके अंदर सतयुग का नारायण भी बच्चे के रूप में प्रवेश करता है बुद्ध रूपी पेट में, करता है या नहीं करता है? महानारायण में दोनों आत्माओं के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं। तो वो चैतन्य आत्मा। क्या चैतन्य आत्मा? प्रैक्टिस के आधार पर आत्मा को याद करने की जो प्रैक्टिस है, मैं आत्मा स्टार, यही स्टार। याद की संपन्न स्टेज जब होती है तो उसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में लिंग के बीच में क्या दिखाया? हीरा दिखाया। हीरो पाटधारी की यादगार। वो हीरो बनता है? हा? वो हीरो नहीं बनता, वो जिसमें प्रवेश करता है उसको हीरो पार्टधारी बनने की युक्ति बताता है। संपूर्ण योगी बनो तो संपूर्ण राजयोगी बनने से तुम विश्व के बादशाह बन जावेंगे। वो महानारायण और महालक्ष्मी। योग की जब संपन्न स्टेज आएगी तो उस समय ये चार आत्माएं मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक बनेंगी या नहीं बनेंगी? जब एक बनेंगी तो इनके अंदर जो संकल्प चलेंगे श्रीमत के अनुकूल, वो समान संकल्प चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? समान संकल्प चलेंगे। उसको कहते हैं मन मना भव। मेरे मन में समा जा, मेरे मन में जो संकल्प वो तेरे मन में संकल्प, दूसरा कोई संकल्प नहीं। मेरे मन में संकल्प, मेरे मन में संकल्प एक शिव बाबा, दूसरा वो एक शिव बाबा का रूप क्या आया, शिवलिंग। क्या रूप आया? शिवलिंग, अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त क्यों? लिंग तो दिखाई देता है, सोमनाथ मंदिर में भी लिंग दिखाई देता था, अव्यक्त क्यों कहा? व्यक्त माने देखने योग्य, अव्यक्त माने न दिखाई पड़े। तो अव्यक्त क्यों कहा? क्योंकि उस लिंग में हाथ पांव नाक आंख कान ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दिखाई नहीं देती। किसको? इस आत्मा को। ऐसी स्टेज अति इंद्रिय सुख की बनाता है कि इंद्रियों के सुख का अनुभव होता ही नहीं। इंद्रियां हैं फिर भी होते हुए जैसे नहीं, जैसे कहते हैं कान हैं लेकिन होते हुए भी नहीं है, आंखें हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देखता। नहीं तो सामान्य रूप से दुनिया में देखा जाए कि जिनको जिनको कान हैं उनको कोई ग्लानी सुनाई देता है, आय हाय हमारी ग्लानी कर दी, ये भगवान है तो ग्लानी क्यों करता है, भगवान के भी ऊपर आक्षेप। माने कोई आत्मा ग्लानी सहन नहीं करती, लेकिन जो आत्मा संपन्न बनेगी वो दुनिया की ग्लानी की परवाह नहीं करेगी। जो सबसे पहले बनता है वो सारी दुनिया की ग्लानी का आक्षेप उसके ऊपर डाला जाए, सारी दुनिया एक तरफ और वो आत्मा एक तरफ, तो भी ग्लानी को सुनते हुए नहीं सुनेंगे। यज्ञ के आदि में भी ऐसा हुआ था, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ थी। आज में भी ऐसे होता है तो अंत में भी ऐसे ही होता है। अंत कब बता दिया, तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में कम 40 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 50। तुम बच्चे माना राजा बच्चे या दास दासी बच्चे, प्रजा बच्चे या राजा बच्चे, राजा बच्चे, कितने राजा? 100। माने 108 आत्माओं का संगठन 2028 में ऐसा पक्का संगठन बन जाएगा तुम ब्राह्मणों का कि जिसमें एक भी विकारी मनुष्य आत्मा उसमें पांव नहीं रख सकेगी। ऐसा मजबूत संगठन बन जाएगा। अभी ऐसा है, अभी इधर भी घुस जाते हैं, यहां बैठ करके सुनते हैं और वहां ब्रह्मा कुमारियों में भी पहुंचा देते हैं। वहां ऐसा ऐसा होता है, वहां के यहां आ जाते हैं, यहां सुनाई देते हैं और यहां के वहां सुनाई देते हैं। ऐसा लंका की राजा जो रावण की नगरी है और राम का जो बंदरों का पुल संगठन है, उन दोनों के बीच में ये ज्ञान का पुल बन जाता है। उधर के इधर आते हैं, इधर के उधर जाते हैं। तो बताया कि वो जो शिवलिंग है उस शिवलिंग में मन के संकल्पों से पहले पहले एक होने वाली आत्माएं चार आत्माएं हैं, महालक्ष्मी और महानारायण। चारों के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन, उनमें भी स्वभाव संस्कार मिलाने में जो आगे आगे जाता है वो प्लस में आ जाता है। जैसे दौड़ होती है ना, दौड़ में कोई आगे निकल गया और नंबर बार पीछे रह गए, लेकिन जो चालाक होता है वो तेजी से नहीं दौड़ता, बीच में थक जाएंगे तो लास्ट में ताकत नहीं लगा पाएंगे, तो पहले धीरे धीरे दौड़ता है, सबके साथ दौड़ता है और लास्ट में क्या करता है, हाई जंप लगाया और ये आ गए, तो कहते हैं प्लस में आ गया। तो संगम युग में आने वाली जो आत्मा है, मनुष्य शक्ति का बाप, वो प्लस में चला जाता। उससे पहले कैसा पार्ट बजाता, दौड़ करने वालों में देखने में आवे ये रियल दौड़ करने वाला तेज दौड़ाई है, दौड़क है, दौड़ने वाला है, यह हम सब के समान दौड़ने वाला है, क्या देखने में आएगा, सबके समान दौड़ने वाला है, लेकिन लास्ट में क्या होता, हाई जंप लगा करके प्लस में आ जाता। तो पुरुषार्थ में नारियल है या रियल पुरुषार्थी है, रियल पुरुषार्थी है, रियल पुरुषार्थ करके दिखाता है, सबके साथ जब दौड़ता है योग बल की, तो रियल रूप में दिखाई पड़ता है, नहीं कैसा दिखाई पड़ता है, सामान्य दिखाई पड़ता है, इसलिए सागर के किनारे फलीभूत रहने वाला दुनिया में एक ही वृक्ष है और उसका एक ही फल है जो नारियल कहा जाता है, क्या चाहे देवियां हो और चाहे देवी देवताओं को रचने वाला भगवान हो शिवलिंग, किसका लिंग, शिवलिंग, शिव का लिंग ही पूजा जाता है, दोनों पर कौन सा फल चढ़ाया जाता है, हैं? नारियल चढ़ाया जाता है। और फलों को उतना श्रेष्ठ नहीं मानते, और वो भी जब चढ़ाया जाता है तो चढ़ाने से पहले दर से आवाज होती है या नहीं है? बड़े से बड़ा बम कौन सा है, है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम, जब वो बम फूटता है बड़े से बड़ा तो जोर से आवाज करेगा या नहीं करेगा, है? करेगा। तो दिखाया, बाप भी कहते हैं ब्रह्मा के मुख से क्या, जो बड़ा होगा पुरुषार्थ में ज्ञान में योग में बड़ा होगा वो क्या करेगा, है? बड़ा कर देंगे, क्या बड़ा कर देंगे,
चित्त, चित्र के बाद चलते
हाँ, वो चित्र में जो मुख्य चित्र है, मुख्य मूर्ति है, उस मूर्ति का बड़ा रूप संसार के सामने आ जाएगा, योग बल में बड़ा। कैसा बड़ा? योग बल में बड़ा, बड़ा कर देंगे। माना ट्रांसलाइट का कैसा चित्र बना देंगे है? बड़ा चित्र बना देंगे। तो बोला ऐसे ऐसे आइडिया, जैसे बाबा उसका भी उस आइडिया का भी बाबा के बुद्धि में आता है, उसका भी ये क्या पेपर वेस्ट की भी आइडिया बाबा ने निकाली। क्या पेपर होता है ना दबने वाला, तो उसने चित्र रख देते हैं अंदर, शीशे का होता है ना ट्रांसपेरेंट, हाँ, तो सब को दबा देता है, कोई को उड़ने उड़ने नहीं देता। तो आइडिया निकाली, मेडल्स भी बन रहे हैं, त्रिमूर्ति के मेडल्स बनते थे पहले, पहले प्लास्टिक के बने, चार चार आने का एक मेडल मिलता था, हजारों लाखों की तादाद में बनाई दी, परंतु वो भी जास्ती चाहिए, जो मेडल जेब में पड़े रहे। क्या? कौन सी जेब में? बुद्ध रूपी पॉकेट में पड़े रहे, ये बाहर पड़े रहे हैं। जब समझाने जाएं तो बुद्ध रूपी पॉकेट में से वो मेडल निकालें और बाप का परिचय देना शुरू कर दे। तो ऐसे मेडल से जास्ती चाहिए, कोई कार्ड्स भी निकालें, विजिटिंग कार्ड और बाकी जो निमंत्रण करेंगे ही, जो जो भी जहां करेंगे भाषण या जो कुछ भी सेवा का शो निकालेंगे, फलाना करेंगे, तो यहां तो कुछ होता नहीं है, माउंट आबू में कोई सेवा का रिजल्ट है निकलता नहीं है, समझा ना? यहां तो हम हैं किनारे में, जैसे हम कहां हैं? हम किनारे पर हैं, बंदर समझते हैं ना बच्चे, हम बंदर समझते हैं बच्चों को। क्या? कौन से बच्चों को? ह्यूमन बच्चों को या जानवर बच्चों को है? हम बंदर किसे समझते हैं? ह्यूमन बच्चों को हम बंदर समझते हैं, दुनिया वाले तो नहीं समझते। फिर भी कोई अच्छा दुकान वाला बाकी हो तो बाजार में वो ट्रांसलाइट का चित्र रख सकता है, देखो बत्तियां बत्तियां भी जला सकते हैं, अगर कोई ऐसा प्रबंध हो सके तो उनके ऊपर जला सकते हैं, कहां ना कहां, अगर कोई प्रबंध हो सके तो अच्छा है। बातचीत अच्छे आदमी से, क्योंकि मैं तो किसी अच्छे आदमी को जानता नहीं। क्या? दुनियावी तरीके से जानता हूं अच्छा आदमी, या बेहद में ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से अच्छे आदमी हैं मैं जानता हूं, हद में जानता हूं, रमेश है अच्छा, क्या ब्रजमोहन है अच्छा, कुमारका है अच्छी, बोला ना, हद में जानता हूँ या बेहद में जानता हूँ? कौन जानता है हद में? ब्रह्मा बाबा हद में जानते हैं और शिव बाबा? शिव बाबा बेहद में जानते हैं। तो अगर शिव जयंती पर वो ट्रांसलाइट का चित्र रख देवे तो भी कोई हर्जा नहीं। लगा तो चारों ओर अंधियारा है क्या? जब ट्रांसलाइट का चित्र प्रैक्टिकल में तैयार होगा तो उस समय सारी दुनिया में अज्ञान का अंधियारा फैला हुआ होगा या ज्ञानी होंगे? है? उस अज्ञान के अंधियारे को भक्ति मार्ग में क्या नाम दिया उस दिन का? महाशिवरात्रि नाम दिया। इस समय तो वो सीजन नहीं संसार का सीजन। हाँ, इस समय तो वो सीजन नहीं है, परंतु जितना कोई कर सके उतना करे। कोई अपनी राय निकाले अच्छी तरह से करे, कोई भाषण करे 10-20 जगह में भाषण करे, कोई प्रोजेक्टर से करे, प्रोजेक्टर में भी ट्रांसपेरेंट दिखाते तो हैं लेकिन चलचित्र नहीं होता, बोलता है प्रोजेक्टर में, बोलता भी नहीं और चलचित्र भी नहीं होता, और वीडियो में बोलता भी है और है? हाँ, कोई प्रदर्शनी से करे, कोई प्रोजेक्टर से करे, ये प्रदर्शनी भी तैयार हो जाएगी। इसका मतलब 67 से पहले प्रदर्शनी के ढेर के ढेर चित्र तैयार नहीं हुए थे। मेरे ध्यान में 5-6 ऐसे 5-6 प्रोजेक्टर, 5-6 प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के प्रोग्राम होते रहे। अभी जिसको करना है वो लिखते जा रहे, बॉम्बे में लिखें, दिल्ली में लिखें, या मेरे को लिखें तो मैं लिख दूंगा। भाई जिसके पास भेजना वो भेज दो। बाबा ने लिखा है कि दिल्ली में कमेटी बन जावे। क्या क्या बन जावे? कमेटी बन जावे। कमेटी माने संगठन है? कमेटी संगठन को कहते हैं या बिखरने को कहते हैं? है? कमेटी माने संगठन। जिस जिसको चाहिए उनको वो लिखें, प्रबंध करें। और बॉम्बे वाले तो हैं ही एक। क्या माने दिल्ली वाले एक नहीं है? जिस समय ये वाणी चल रही है उस समय दिल्ली वाले मिलकर के बी के एक नहीं है। कौन है? बॉम्बे वाले एक हैं। पूना और बॉम्बे सो तो अपना एक रख देवे, और बाकी कुछ भी जास्ती प्रोजेक्टर वगैरह हो, प्रदर्शनी के लिए भी चित्र हो तो वो दिल्ली में भेज देवे, कहां ना कहां रख देवे। अभी तो महीना पड़ा है, कोई थोड़े दिन नहीं है, महीना पड़ा है। जितनी कोशिश करें निमंत्रण भेजें, अच्छों अच्छों को भेजें, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड भेजें, समझाने वाले ऐसे रंगीन कार्ड बहुत रखे हैं। शायद 5-7 हजार कार्ड रखे हैं वो त्रिमूर्ति वाले कार्ड, जिनमें 3 मूर्तियां छपी हुई है, चैतन्य कार्ड या जड़ कार्डों की बात बेहद का बाप कर रहे होंगे,
चैतन्य कार्ड, कार्ड में तीन मूर्तियां छपी हुई हो, क्या तीन मूर्तियां स्पष्ट छपी हुई हो, बाबा के पास 5-7 हजार रखे हैं, क्या कितनी संख्या हो गई, प्रजा वर्ग के हैं या राजा वर्ग के हैं, है प्रजा वर्ग के हैं वो त्रिमूर्ति वाले कार्ड, ब्लैक में भी है, लिखत भी है, और वो मुरली में लिख देना चाहिए रंगीन भी, और वो लिख देना चाहिए ब्लैक इतने हैं और वो रंगीन इतने हैं, क्या कार्ड कैसे ब्लैक भी और रंगीन भी, रंगीन का क्या मतलब, ब्लैक का क्या मतलब है, अरे शरीर में जो संकल्पों का खून बहता है, स्थूल हो चाहे चैतन्य खून हो, वो कितने प्रकार का होता है, है? दो प्रकार का होता है, एक रंगीन खून और एक काला खून, माने आधी नसेनाड़ियां ऐसी हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, काला संकल्पों का खून बहाने वाली, और आधी है राइट, ये से उनकी टोटल संख्या 16,108, वो अभी नहीं है, अभी 5-7 हजार है, कितनी है 5-7 हजार, ओम शांति।